Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Pujya Swamiji ke charano mein pranam. Boliye Sachidanand Bhagwan ki jai. परम पूज जगत गुरु आद्य श्री शंकराचार्य भगवान की जय। ब्रह्म विद्यापीठ कैलाशाश्रम के पंचम पीठाधीश महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। ओम शनो मित्र शन वरुण शनो भवत्वर्यमा शन इंद्रो बृहस्पति शनो विष्णु रुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां अवतु वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येम क्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गै सुष्टुवा संस्तनुभिर्व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो ब्रह्मश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति 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 ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 हरि ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ॐ नारायण
हरि ॐ पूज्या महाराज जी के पुनीत चरणों में वंदन करते हैं। श्रावण का महीना है, शिव के गुणगान गाना है हमें, शिव भक्ति से हमें आगे बढ़ना है और प्रेमपुरी आश्रम भी शिव स्थान पर ही है और वहां पूज्य महाराज जी की अखंड वाणी का गान हम सुनेंगे मांडुक्य उपनिषद के जो प्यारा ग्रंथ है जिसमें पूरी शिव की बातें जीव और शिव की जो बातें हैं उसी का और महाराज जी द्वारा अगर जब भी उसकी बातें हमारे सामने प्रवचन के रूप में रखी जाएगी तो उसका महत्व और भी बढ़ेगा और ऐसे पूज्य महाराज जी अखंडानंद जी महाराज को हम वंदन करते हैं। हरिओम।
ओम तत्सत् तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। यो असौ स्वाहं यजामि। ओम शांति। इन दिनों हम अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद का सहारा लेकर ऋषियों के सदचिंतन और ऋषियों का जो अनुभव है जिसमें उन्होंने हमारे जीवन के लक्ष्य को निर्धारित किया और उस लक्ष्य की प्राप्ति के साधन क्या हैं, साधनों का प्रयोग करते हुए बाधाएं कौन सी आती हैं और उन बाधाओं को दूर कैसे किया जा सकता है, इस सब का बहुत स्पष्टता से बहुत संक्षेप में और बहुत ही व्यवहारिक ढंग से निरूपण किया। ऋषियों की उस तपस्या का, ऋषियों के उन अनुभवों का अगर हम लाभ उठा सकें तो ऋषियों का जीवन भी सार्थक और हमारा भी ऋषि ऋण से उन्मुक्त हो जाना निश्चित हो जाता है। अन्यथा जीवन में ऋणी ही रहेंगे और जो व्यक्ति कर्जा उतार नहीं सकता वो ना लोक में और ना परलोक में ही सुख को प्राप्त कर सकता है। पितृऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और समाज ऋण, हमारे ऋषियों ने ऐसा एक ढंग निकाला कि इन चारों ही ऋणों से हम एक ही प्रयत्न से मुक्त हो सकते। आम व्यक्ति के लिए तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये रास्ता है, लेकिन स्वयं की भव्यता को पहचान लेना ये सीधा ही एक रास्ता है जिनसे हम समस्त ऋणों से मुक्त होकर मोक्ष का अनुभव करते। मांडुक्य उपनिषद कलेवर में बहुत छोटी उपनिषद है, इसमें कुल 12 मंत्र हैं। उन 12 मंत्रों की व्याख्या में गौड़पादाचार्य जी ने कारिकाएं लिखी, वो 215 श्लोक है जिसमें उपनिषद के 12 मूल मंत्रों की व्याख्या की गई है। उन 215 श्लोकों में हर तरह से जो समझाने की कोशिश की गई है वो यहां गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित ये मांडुक्य उपनिषद जो संभवतः कल सबको ही उपलब्ध करवा देंगे, जो भी इसको देखना चाहे मिल जाएगा। इसमें शुरू किया है उन्होंने ओम तत् सत् ब्रह्मणे नमः। वह ब्रह्म जो सत नाम से जाना जाता है उसको नमन है। जागृत आदि त्रयोन्मुक्तम जागृत आदि मयम तथा ओंकारैक सुसंवेद्यम यत् पदम तन्नमाम्यहम्। संक्षेप में ये कहकर कि उस ब्रह्म को जिसको सत कहते हैं मैं नमन करता हूं, और फिर साथ में ही थोड़ी सी उस सत की व्याख्या कर दी। दोबारा नमन किया तो कह रहे हैं जागृत आदि त्रयोन्मुक्तम। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं इस उपनिषद की विशेषता ये है कि ये आप सबके अनुभव पर आधारित है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो इन तीन अवस्थाओं से परिचित ना हो। जागृत से, स्वप्न से और सुषुप्ति से, ये तीन अवस्थाएं हैं। इन तीनों में से किसी न किसी एक में हम हर समय रहते, या तो हम जाग रहे होते हैं, या हम सो रहे होते हैं, या हम स्वप्न देख रहे होते हैं। इन तीनों के अतिरिक्त और कोई चौथी अवस्था नहीं, क्योंकि ये हम सब के अनुभव में आती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा भी विचारवान है, विवेकशील है, उसको अपने से नजर हटाकर कहीं और सत्य को ढूंढने की जरूरत नहीं। अपने से अलग और किसी अनुभव को जानने की जरूरत नहीं, और ये अनुभव प्रतिदिन का है, हर रोज का है, इसलिए इसे याद रखने की भी बार बार जरूरत नहीं। कुछ होते हैं काम जो कभी साल भर बाद हो, 6 महीने बाद हो, तो ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन इन तीन अवस्थाओं में से हर एक से हमारा वास्ता हर रोज पड़ता है। तो यहां वो ये कह रहे हैं कि जगत जागृत आदि त्रयोन्मुक्तम, ये जो जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न तीन अवस्थाएं हैं, जो इन तीनों से मुक्त है, अर्थात वो स्वयं न जागता है, न सोता है, न स्वप्न देखता है, ऐसा जो कुछ भी है उसको ही सत कहते हैं, उसको ही ब्रह्म कहते हैं। ऊपर जिसको सत कहा, यहां उन्होंने उदाहरण दे दिया कि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में जो तत्व एक जैसा रहता है वो सत्य, अर्थात उसमें परिवर्तन नहीं कि वो कभी जागता है कभी सोता है कभी स्वप्न देखता है। जागना सोना स्वप्न देखना यह अंतःकरण का धर्म है, आत्मा का नहीं। आत्मा के प्रकाश से अंतःकरण प्रकाशित होता है, आत्मा के आभास से अंतःकरण प्रतिभासित होता है, बिजली के करंट से बल्ब में रोशनी आती है ऐसा मान। अगर पीछे बल्ब के बिजली का करंट ना हो तो वो रोशन नहीं होगा। तो अंतःकरण जड़ है, आत्मा चेतन है, जैसे बल्ब अपने आप में जड़ है, जब बिजली आ जाए तो वो प्रकाशित होता है, रोशनी देता है। ये बात भी केवल समझने के लिए कही जाती है, अन्यथा उसका कोई उदाहरण नहीं है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, ना तो उसको शब्दों के माध्यम से कहा जा सकता है और ना ही उस जैसा कोई और है कि हम उसका उदाहरण दें कि अमुक वस्तु जैसा। ये केवल समझने के लिए, केवल अपने अभ्यास के लिए ये बात कही गई कि इन तीनों अवस्थाओं में कुछ एक है जो कभी बदलता नहीं, ना वो सोता है ना वो जागता है ना वो स्वप्न देखता है, वो इन तीनों से अलग है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैं सोया, मैंने स्वप्न देखा, मैं जाग पड़ा, मैंने जागते हुए ऐसा किया वैसा किया, ये बातें हम करते रहते। लेकिन जब विचार करेंगे तो फिर इस बात का पता लगता है कि अगर मैं सोया और सो के उठने के बाद भी मुझे सब कुछ याद है, सोने में तो सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता, सोए तो कुछ भी याद नहीं रहता, जब उठ गए तो सब कुछ याद आया। तो इस पर जब विचार करें, देखो अगर सोते हुए भी सब कुछ याद रहे तो नींद नहीं आएगी। या फिर हम कई बार कहते हैं कि मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था, अमुक ने आवाज दी तो मैं उठ गया, ये अपने आप में विरोधी शब्द है कि अगर मैं सो रहा था तो आवाज किसने सुनी। गहरी नींद में सोने का अर्थ तो होता है कि कोई याद ही नहीं कुछ। तो अगर मैं गहरी नींद में सो रहा था और किसी ने आवाज दी तो मैं उठ गया, इसका अर्थ यही है कि सोने वाला कुछ और है और सोते हुए भी कुछ ना कुछ है जो जाग रहा, जो निमित्त बना, जो कारण बना आपको उठाने का, इसलिए मैं उठ गया। अगर वो भी सो गया होता साथ में तो फिर कोई कितनी भी आवाजें दे फिर नहीं उठेगा। तो इस तरह से जो बदलता नहीं, सोने से जागने से स्वप्न देखने में जो एक जैसा रहता है, उसी को ही पहले उन्होंने तत् सत् ब्रह्मणे नमः, उस ब्रह्म को सत रूप से नमस्कार किया। वो सत क्या है? सत वो होता है जो कभी बदले नहीं, हर स्थिति में एक जैसा रहे। उसका उन्होंने उदाहरण दिया समझने के लिए कि एक जैसा जो हर समय रहे वो वही है जो आप हमारे सो जाने पर, स्वप्न देखने पर, जाग जाने पर कभी स्वयं न सोता है, न स्वप्न देखता है, न ही वो जागता है, वो एक जैसा रहता है। तो वो जो एक जैसा रहता है उसको इन अपनी अवस्थाओं का विचार करने पर पकड़ा जा सकता है। इसलिए उन्होंने इसी की व्याख्या करेंगे पूरे उपनिषद में, यहां तो केवल संक्षेप में उन्होंने ये बात कह दी। फिर वो कहते हैं जागृत आदि मयम तथा, इन अवस्थाओं वाला होते हुए भी वो अवस्थाओं से परे। मयम का मतलब है ये उसी की अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये उसी की अवस्थाएं हैं, उस आत्मा की ही उसी की अवस्थाएं हैं। का मतलब ये है कि उसी के कारण ये अवस्थाएं हमें मालूम पड़ती, वो स्वयं ये अवस्थाएं नहीं है लेकिन उसी के कारण ये अवस्थाएं हमें मालूम पड़ती हैं, लेकिन वो स्वयं इनमें से किसी भी अवस्था वाला नहीं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय में सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जिता बहुत सुंदर ढंग से इसी बात को ही समझाया गया कि सब इंद्रियों का प्रकाशक होते हुए भी स्वयं इंद्रियों वाला नहीं। इसका जितना जितना चिंतन करें कि स्वयं इंद्रियों वाला नहीं है, सब इंद्रियों का प्रकाशक है, तो अंत में अर्थ यही निकलेगा कि सब इंद्रियां उसी की, जो कोई भी देख रहा है उसी की शक्ति से देख रहा है, स्वयं उसके और कोई देखने वाला नहीं। ऐसे ही यहां अवस्थाओं का सहारा लेकर जागृत आदि अवस्थाओं में जो कभी बदलता नहीं उस सत्य की यह बात है। ओंकार एक सुसंवेद्यम तत्पदम तन्नमामि। अब उस सत्य को समझने के लिए ओंकार एक संवेद्यम कह रहे हैं, उसको ओम के माध्यम से ही समझा जा सकता है, ओंकार के माध्यम से ही उसको समझा जा सकता है, उसी के माध्यम से उसको इस उपनिषद में समझाएंगे। इसलिए उस सत्य को जिसे ब्रह्म भी कहते हैं और जिसको समझने के लिए ओम का सहारा लिया जाएगा, इन सब को मैं नमस्कार करता हूं। नमाम्यहम का अर्थ ये होता है, नम का अर्थ होता है नम्रता, इन सब की ओर मैं नम्रता से बढ़ता हूं, अर्थात अहम को छोड़कर। अगर इसको समझने में अहम ही बाधा है और कोई बाधा नहीं है, नम का अर्थ होता है अहम को छोड़ना, नम का अर्थ होता है नम्रता, नम का अर्थ होता है न मम मेरा नहीं। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि मैं अहम का परित्याग करके नम्रता पूर्वक ओम सत और ब्रह्म, ये जिसके तीन विभिन्न नाम हैं अलग अलग तरह से, क्योंकि उसी को वेदांत के शब्दों में ब्रह्म कहेंगे, दर्शन शास्त्र के शब्दों में उसको सत्य कहेंगे, फिलॉसफी में उसको ट्रूथ कहते, स्पिरिचुअलिटी में उसको ब्रह्म कहते और व्यवहार में उसको ओम कहते, उच्चारण में व्यवहार में उसको हम ओम कहते हैं। ओम ब्रह्म और सत ये तीनों एक ही है। ये उपनिषद सबसे छोटी और सबसे गंभीर भी साधना की दृष्टि से इससे उत्तम और कोई ग्रंथ नहीं है। ये बात भी कही गई कि मोक्ष के इच्छुकों के लिए मांडूक्य ही काफी है। मांडूक्य की कोई भी एक बात अगर समझ में आ जाए और हम उसे जीवन में धारण करें तो उसी से ही मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष का अर्थ है हर तरह की चिंताओं से मुक्त हो जाना, क्योंकि जितनी चिंताएं हैं वो असत्य के दायरे में है, सत्य में कोई चिंता नहीं होती। और मोक्ष का मतलब है सत्य की अनुभूति, सत्य स्वरूप हो जाना। जब सत्य समझ में आ गया तो असत्य स्वयं ही छूट जाता है, वो रहेगा ही नहीं। और जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी परिवर्तन है, जितना भी मरना जीना सुख या दुख द्वंद जितने भी हैं, वो सब के सब असत्य में है, सत्य में कोई नहीं। ऐसा ये मंगलाचरण के छोटे से, ये मंगलाचरण नहीं है इसका, ये वैसे ही उन्होंने एक इशारा दे दिया कि हम इस उपनिषद में क्या करने जा रहे हैं। ब्रह्म को जानना है, उस ब्रह्म को सत्य भी कहते हैं, और उसको समझने के लिए ओम का सहारा लिया जाएगा। देखो यहां पर बहुत बार आपने ये सुना कि उस ब्रह्म को वही समझ सकता है जिसको वो ब्रह्म स्वयं अपने आप को समझवाना चाहे। सोई जाने यह देहु जनाई यमय वेश वृणुते, ऐसा उपनिषद में भी आया कठोपनिषद में कि जिसका वो स्वयं वर्ण करता है उसी को वो अपने आप को समझाता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये भी बात अगर ध्यान में रखी जाए कि वो अपना ही एक अपने आप को समझाने के लिए ओम के रूप में सामने आएगा, ये इसका अर्थ है। कि बात तो सत्य की ही होगी, बात तो ब्रह्म की ही होगी, लेकिन वो ब्रह्म अपने आप को समझाने के लिए, जैसे आपने हमेशा ये बात सुनी कि ब्रह्म अखंड है, अद्वय है। अखंड का मतलब होता है जिसके टुकड़े ना हो सके। तो अगर वो अखंड है तो ये जो ओम के माध्यम से अपने आप को वो समझा रहा है, इसका अर्थ केवल इतना ही समझ लें आप। आम तौर पर लोग ये कहते हैं कि ये साधन है और वो साध्य। हमने कहीं पहुंचना हो मंजिल पे तो मंजिल को साध्य कहते हैं, और जिस माध्यम से हम पहुंचे, जिस रास्ते से हम पहुंचे, उसको साधन कहते हैं। इस साधन को अपनाकर उस साध्य तक पहुंचे। जहां पर भी साध्य और साधन की बात आएगी वहां पर प्रधानता और गौणता, उसका अर्थ होता है कि साध्य ही प्रधान है, मुख्य बात तो साध्य है जहां तक जाना है, साधन गौण है। अगर साधन को अपनाकर भी साध्य तक नहीं पहुंचे तो कोई अर्थ नहीं, और अगर साध्य तक पहुंच जाओ तो साधन कोई भी अपना लो तब भी जायज है, क्योंकि मुख्य तो साध्य है साधन नहीं। यहां पर मुख्य बात ये बतलाएंगे या ये समझनी है कि ओम साधन नहीं है साध्य तक पहुंचने का। ऐसा नहीं है कि ओम साधन हो और ब्रह्म साध्य हो, ये बात नहीं है। ये साध्य साधन दोनों एक ही बात है, साध्य भी यही है साधन भी यही है। दूसरी बात, इस बात को इस तरह से थोड़ा समझ लो, अगर कोई मंजिल है जहां चल के जाना है तो रास्ता चाहिए और रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। मंजिल में और रास्ते में फासला होता है, दूरी होती। जैसे हम कुछ भी जगह, हम ये कहते हैं कि हमें यहां से डोंबिवली जाना है। तो डोंबिवली यहां से 50 किलोमीटर है ये फैसला। तो ये 50 किलोमीटर हम सबके लिए 50 किलोमीटर है, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कम किलोमीटर हो किसी के लिए ज्यादा हो, सभी के लिए 50 किलोमीटर है, कोई इसमें रियायत नहीं है किसी के साथ। तो जहां साध्य साधन होती हैं, रास्ते और मंजिलें होती हैं, वहां किलोमीटर भी गिने हुए होते हैं और साधक चलते हुए ये भी देख लेता है कि इतने किलोमीटर चल आया हूं, इतने बाकी रह गए, ये सब बातें होती हैं। और जहां चलकर अपने तक ही आपने पहुंचना है,